भगवान कर्मयोग के बारे में श्लोक नंबर 47 और 48 में उन्होंने बताया, कौन से कर्म करने चाहिए? कर्तव्य कर्म करने चाहिए। दूसरा, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, काम में कर्म नहीं करने चाहिए। देखो, कैसे पता लगेगा कौन से नहीं करने चाहिए? आपको अपने आप को यह पूछना है कि भगवान इस कर्म से खुश होंगे कि नहीं। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो भगवान खुश होंगे? नहीं। तो इसलिए निषिद्ध कर्म नहीं करना है। हम कर्म केवल अपने लिए करें, दूसरों के लिए ना करें, इसमें भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। क्यों? भगवान सब जगह है, हम सबके लिए कर्म करेंगे। तो अपने कर्तव्य कर्म करो, निषिद्ध कर्म नहीं करने हैं, काम में कर्म नहीं करने हैं। कैसे करना है कर्म, कर्मयोग करना कैसे है? तो हम लोगों ने देखा था कि आपको व्यवसायत्मिका बुद्धि करनी है। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका स्वभाव की बुद्धि। निश्चय क्या किया? कि हम कर्मयोग करेंगे। एक तो ये आपको निश्चय लेना है। दूसरा, कर्म फल इंस्पिरेशन ना हो, हम कर्म फल के लिए कर्म करें ऐसा कभी ना हो, क्योंकि कर्म फल बांधता है। तो अगर कर्म फल इंस्पिरेशन ना हो तो इंस्पिरेशन हमको किससे मिलेगा? भगवान से मिलेगा, क्योंकि कर्म फल से भी ऊंचा भगवान का दर्जा है। तो जितना आपका दर्जा ऊंचा रहेगा उतना आपका जो है वो अच्छा रहेगा। तो भगवान सबसे ऊपर है, तो हम भगवान के लिए करेंगे, तो इंस्पिरेशन वहां से मिलेगी हमें। देखो, भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं ना तो प्रेम आता है, और जैसे ही प्रेम आएगा ना सेवा अपने आप होगी। जिसके साथ आपको प्रेम होगा ना उसके लिए आप काम करना चाहोगे। रिटर्न में क्या मिलेगा आप कभी नहीं पूछते हो। उसके बाद बोले कैसे करें? संगम त्यक्त्वा, आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सुख दुख ये आएंगे, मान अपमान शीत उष्ण ये आते रहेंगे, मगर हमको कैसा बने रहना है? समत्व बना रखना है। समत्वम योग उच्यते, ये समत्व को अगर हम रख पाए तो इसी को हम योग कहते हैं। हम कैसे टेस्ट करें अपने आप को कि हमने कर्म योग किया कि नहीं किया? बोले जब अगर फल आता है ना, फल आने पर अगर आपको दुख हुआ या सुख हुआ तो आप सम रहें। दुख हुआ तो आप यह कमरा बंद करके ना बैठ जाओ। अगर कमरा बंद करके बैठ गए तो कर्मयोग नहीं हुआ, समत्व नहीं हुआ। और अगर आपको पुण्य है, आपको सुख मिला है, बहुत खुशी हुई है, तब भी सम रहना है। अब वो कहते हैं ये समत्व बुद्धि से ईश्वर आराधना के किए जाने वाले कर्म उनकी अपेक्षा जो साकाम कर्म है ना वो निकृष्ट है, भगवान ये कहने जा रहे हैं। जो कर्म हम लोग आज तक करते आए, भगवान कहते हैं कि कर्म योग से ये सारे के सारे निकृष्ट हैं। क्यों निकृष्ट हैं भगवान बताएंगे। श्लोक नंबर 49।
दूरे न यवरम कर्म,
दूरे न यवरम कर्म,
बुद्धि योगा धनंजय,
बुद्धि योगा धनंजय,
बुद्धो शरणमन्विच्छ,
बुद्धो शरणमन्विच्छ,
कृपनाफलहेतवः,
कृपनाफलहेतवः, दूरे नयवरं कर्म, बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धो शरणमन्विच्छ, कृपनाफलहेतवः।
दूरेन यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अवरम लोअर निकृष्ट, कौन सा? बोले जो साधारण कर्म करते आ रहे हैं ये निकृष्ट है कर्म योग से। बुद्धि, बुद्धि योगा, बुद्धि का मतलब क्या है यहां पर? व्यवसात्मिका बुद्धि। अगर आपने व्यवसात्मिका बुद्धि रखी है, व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब क्या? निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय किया है? कर्मयोग करेंगे हम। तो यहां पर बुद्धि योगात धनंजय, दो वर्ड है ना, बुद्धि और योग। यहां बुद्धि का मतलब है कि आपने ये निश्चय कर लिया कि हम कर्म योग करेंगे। और योगात का मतलब क्या है? समत्व बुद्धि। कर्म योग जो है समत्व बुद्धि को भी कर्म योग कहते हैं। तो आपने समत्व बुद्धि रखेंगे, फल जो भी आएगा हम सम रहेंगे, मगर हम कर्म योग करेंगे, उसको हम कहते हैं बुद्धि योग। तो इस बुद्धि योग से किया हुआ कर्म साफ नजर आता है। अगर आप कर्म योग करोगे ना तो वो साफ साफ नजर आएगा एकदम। कैसे नजर आएगा हम आपको बता देते हैं, अभी नजर आएगा आपको। देखो, अगर आपको पाप पुण्य को छोड़ना, मतलब कर्तृत्व को छोड़ना है, पाप पुण्य का छूटना कर्तृत्व डूअरशिप का छूटना है, सुख दुख का छूटना जो है भोक्तृत्व का छूटना है। और ये कर्तृत्व जाएगा कैसे? बोले सांख्य योग से जाएगा। सांख्य योग मिलेगा कब? जब मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध कब होगा? जब कर्म योग करेंगे। सब एक के साथ एक रिलेटेड है। तो ये कैसे हमको पता लगेगा कि साकाम कर्म है? जैसे ही आप साकाम कर्म करोगे ना, तो कर्म के पहले, कर्म के दौरान, फल मिलने के बाद भी माइंड एजिटेटेड रहेगा। साकाम कर्म के अंदर कर्म करने के पहले भी आप चिंतित रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। कर्म करने के टाइम में फल की चिंता करते हो, जितना सोचा था उतना होगा कि नहीं होगा। और फल मिलने के बाद में आपकी आशा के अनुसार अगर फल नहीं मिला फिर भी चिंतित हो। मगर कर्मयोग के अंदर बोले एकदम दूसरा है। कर्मयोग के अंदर में करने के पहले, करने के समय, करने के बाद मन शांत रहता है। क्यों? हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। करने के पहले हमने निश्चय किया है कर्मयोग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। करने के समय भी मन खुश है, हमें कोई चिंता नहीं। फल समत्व बुद्धि हमने ठीक की हुई है, सम रहेंगे। तो कर्म योग से अगर आप काम करोगे तो आपका मन शांत। साकाम कर्म में मन एजिटेटेड कंटिन्यूअसली। ये फर्क है। इसलिए काम कर्म जो है कर्म योग से निकृष्ट है। साकाम कर्म के अंदर मन की अशांति रहती है, कर्मयोग के अंदर मन की शांति बनी रहती है। इसलिए जो कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। बुद्धौ शरणम, बुद्धौ मतलब कर्मयोग की शरण लो, कर्मयोग की शरण लो। और इसे कर्मयोग से की शरण लोगे तो क्या मिलेगा? अभय प्राप्ति होगी। अभय प्राप्ति मतलब कर्मयोग के बाद में मन शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद में आप अभय फियरलेस, नो फियर ऑफ डेथ, अभय मिल जाएगा आपको। अनविच का मतलब है अनु, मैंने बार बार आपको यह चेष्टा करनी होगी हम कर्मयोग की तरफ आए, कर्मयोग की तरफ में आए हैं, ये विचार आपको सदा बनाए रखना होगा। तो हमको कर्म के अंदर असली चीज क्या है, भगवान को जोड़ना है। पूरे इस स्कीम के अंदर आपको ये नजर आएगा कि हमको भगवान को अपने कर्म में जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक आदमी जो है गंगा स्नान करता है मगर गंगा को देवी नहीं मानता, दूसरा आदमी गंगा स्नान करता है मगर गंगा माता को देवी मानता है, दोनों में फर्क क्या आएगा रिजल्ट? देखो दोनों के अंदर यह फर्क आएगा, पहला व्यक्ति जो उसको देवी नहीं मानता है वो नहा के बोलेगा आनंद से नहाया, और दूसरा व्यक्ति बोलेगा आनंद से नहाया मगर मेरा माइंड भी प्योर हुआ क्योंकि मैं उसको देवी मानता हूं, अंतःकरण शुद्ध होता है। ये फर्क है, ईश्वर को जोड़ने से मन की शुद्धि, ईश्वर अगर नहीं जोड़ेंगे मन शुद्ध नहीं होगा। तो पहला काम हमारा क्या है, मन को शुद्ध करना। मन को शुद्ध करने के लिए ईश्वर को अपने के जीवन में लाना पड़ेगा। कृपणाः फलहेतवे, कृपण मत बनो। क्यों कृपण मत बनो? भगवान के लिए कर्म करके आनंद लो, प्रसाद रूप के अंदर उसको प्रसाद, उनका जो कर्म फल आएगा उसको प्रसाद रूप से लो। और जो कर्म ऐसे नहीं करता है वो कर्म उसको बांधता है, जिसने साकाम कर्म किया वो कर्म के बंधन में पड़ जाता है। कर्म के बंधन में मतलब वासना के हिसाब से डिजायर आएगी बुद्धि में, बुद्धि के बाद में हमारे शरीर से कर्म हो जाएगा, फिर कर्म फल आएगा, फिर वासना बन जाएगी, तो हम उस अनर्थकारी परंपरा के अंदर घूमते रह जाएंगे। ये बंधन है जो आज तक हमने कर्म किए हैं, अगर ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की खुशी के लिए अगर नहीं किए हैं तो हम उस अनर्थकारी परंपरा के अंदर घूम रहे हैं। देखो अर्जुन ने भी कहा कि देखो कृपण वर्ड कहा, भगवान कहते हैं कि अगर आप कर्म फल के लिए अगर करते हो तो आप कृपण हो, कृपण। अर्जुन ने भी कहा भगवान से कार्पण्य दोष अपहित चेतस, मेरा अभी चेतस, मेरा मन अभी कृपण हो गया। कृपण किसको कहते हैं? कृपण उसको कहते हैं जिसके पास में धन है वो ना तो दूसरों को देता है ना अपने ऊपर खर्च करता है, उसको कृपण कहते हैं। माइजर किसको कहते हैं? पैसा है मगर हम देंगे भी नहीं और अपने ऊपर वो भी नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को कार्पण्य दोष हो गया, मेरे पास बुद्धि है मगर अभी हम खर्च नहीं कर पाते, उसको व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरा अभी प्रॉब्लम यह है कि मेरे को कार्पण्य दोष हो गया है। अब मेरे को यह बताओ भगवान मेरा क्या ड्यूटी है, यह उसका प्रश्न था। कृपण जैसे हमने अभी बताया धन है मगर नहीं खर्च करेंगे, ऐसा कृपण व्यक्ति जब जाता है कहीं दुकान में तो पूछता है भाई कॉफी कितने की है, वो बोलेगा $10 की है। अच्छा बिना दूध की जो कॉफी, यहां तो बन नहीं बताएंगे, यहां बोलेंगे दूध वाली है, दूसरी बनती नहीं यहां पर। इंडिया में जाओगे तो बोलेगा अच्छा ठीक है $5 में दे, ₹5 में दे देंगे आपको, दूध वाली ₹10 की, बिना दूध की। कृपण पूछेगा कि बिना कॉफी गर्म पानी का कितना लोगे? ये कृपण, कृपण। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो कृपण है वो क्या कहता है, कृपण दीना फल हेतव फल तृष्णा युक्ता संत। यहां पर बृहदारण्यक का उपनिषद से वो लोग कहते हैं यो वा एतद अक्षरम गार्गी अवितित्वा अस्मान लोकात प्रेति स कृपणा, जो इस लोक से ओ गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद ने गार्की एक समय में जनक की सभा की एक विचारपति थी, जस्टिस, जज थी। तो वहां पर प्रसंग आया है कि ओ गार्गी, जो आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाता है बिना आत्मज्ञान पाए, वो कृपण है। कैसे कृपण है? अरे अज्ञानी आए, अज्ञानी मर गए। जब आए थे तब भी हम इग्नोरेंट थे, ये तो निश्चित है ना। जो इग्नोरेंट होता है उसी का जन्म होता है। ज्ञानी का जन्म अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम जन्म के समय अज्ञानी थे, और बिना ज्ञान के अगर चले गए तो फिर कैसे जाएंगे? अज्ञानी जाएंगे ना। भगवान कहते हैं कि आपके पास में हमने बुद्धि दी थी, आपने व्यवहार नहीं किया। आप इस बुद्धि से आप आत्मज्ञान लेके मुक्त हो सकते थे, दूसरा जन्म आपका नहीं होगा। देखो महात्मा लोग उसको ऐसे बताते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में एक सुपर कंप्यूटर है, वो दुनिया की बड़ी 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 कैलकुलेशन कर सकता है, और आपने उसको ले आकर उसके अंदर क्या किया, अपनी तस्वीर फोटो उठाई और उसको स्टोर कर दिया ना। तो ये शरीर क्या है? सुपर कंप्यूटर है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हमको मालूम नहीं है कैसे इसको चलाना है। एक कर्म योग जो है ना, आर्ट ऑफ एक्शन है। ध्यान योग है, आर्ट ऑफ मेडिटेशन है। भक्ति योग क्या है? आर्ट ऑफ डिवोशन है। सारी गीता क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग है, कैसे रहना चाहिए। ये मैनुअल है हमारा, कैसे काम करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे ध्यान करना है, सब लिखा हुआ है। अगर हम ना पढ़े तो वही हाल होगा ना। आपने सुपर कंप्यूटर खरीदा, उसका मैनुअल पढ़ा नहीं, आपको केवल एक ही काम आता है, जहां जाते हो तस्वीर उठा लेते हो, स्टोर कर लेते हो, फिर डिलीट कैसे करना है ये भी नहीं पता होता है। तो हम यही काम कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जो इस लोक से बिना आत्मज्ञान के पाए चला जाता है वो क्या है? कृपण है, वो माइजर है। जो कर्म फल के पीछे घूमता रह गया वो अज्ञानी था, जन्म भी अज्ञान के रूप में और मृत्यु भी अज्ञान के रूप में हुई उसकी। इसलिए भगवान हम लोग को ये उपदेश देते हैं कि आप कर्मयोग करो, कर्म योग करके मन शुद्ध कर लो। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब आप ज्ञान के अधिकारी बनोगे। बिना मन की शुद्धि किए ज्ञान अगर सुनोगे, अर्जुन की तरह होगा। अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया मगर काम नहीं हुआ। मन शुद्ध होगा उसके बाद में ज्ञान बैठेगा, ज्ञान बैठेगा इसका मतलब मुक्ति हो गई। आप जीवित काल में ही यहां पर मुक्त घूम सकते हो इस पृथ्वी पर। बहुत को एक और डिफिनीशन है कर्मयोग की, वो श्लोक नंबर 50 के अंदर आ रही है। तो एक तो समत्व योग उच्चते, वो भी कर्मयोग है। कर्तव्य कर्म करना भी कर्मयोग है। और ये अभी आ रहा है योग कर्मसु कौशलम, ये भी कर्मयोग है। देखते हैं।
बुद्धियुक्तो जहाति है,
बुद्धियुक्तो जहाति है,
उभे सुकृत दुष्कृते,
उभे सुकृत दुष्कृते,
तस्मात् योगाय युज्यस्व,
तस्मात् योगाय युज्यस्व,
योगः कर्म सुकौशलम्,
योगः कर्म सुकौशलम्,
बुद्धियुक्तो जहातिह, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्म सुकौशलम्।
बुद्धियुक्तः, बुद्धियुक्त मतलब कौन सी बुद्धि? फिर बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा, दो बार हो गया है, तीसरी बार व्यवसायत्मिका बुद्धि। बुद्धि का मतलब व्यवसायत्म का बुद्धि, व्यवसायत्म का बुद्धि का मतलब निश्चय कर लिया, क्या निश्चय किया, कर्मयोग करेंगे, ये बुद्धि। और उसके साथ में क्या होना चाहिए, समत्व बुद्धि, कि फल जो भी आएगा हम उसके अंदर सम रहेंगे। आप सीधे सीधे कह सकते हो ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, हम जो भी कर्म करेंगे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे और जो भी फल हमको मिलेगा वो ईश्वर का प्रसाद लेके हम स्वीकार कर लेंगे। जब आप इस मंदिर जाते हो प्रसाद जो मिलता है तो आप कहते हो हमको कमती दिया, ज्यादा दिया, उसको मिश्री दिया, मेरे को आप ये दे रहे हो, ऐसा नहीं कहते हम, जो मिला कम बेसी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। उभे जहाति इह सुकृत दुष्कृते, उभे दोनों सुकृत दुष्कृत जहाति ये दोनों ही छूट जाते हैं, ये यहीं पर सुकृत दुष्कृत मतलब पाप पुण्य, ये दोनों के दोनों यहीं छूट गए। कैसे छूट गए भाई, ज्ञान होने से दोनों छूट जाते हैं, आपके जितने भी पाप हैं और जितने भी पुण्य हैं ज्ञान होने से दोनों ही चले जाएंगे। अब सोच लो भैया, आप लोग बोलोगे पाप जाए तो अच्छा है, पुण्य नहीं जाना चाहिए मेरा, ऐसा ज्ञान दो पाप चला जाए ठीक है मगर पुण्य नहीं मेरा जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। मगर यहां कहते हैं दोनों ही खत्म हो जाएंगे आपके। देखो अगर पुण्य भी बचा रहेगा ना फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, ये इसके पीछे भाव है। मान लो पाप चले गए आपके, पुण्य बहुत हैं, स्वर्ग लोग चले जाओगे, खत्म होकर फिर वापस आना है, जन्म लेना होगा। मगर ज्ञान से सारी खत्म हो जाते हैं, सब जल जाते हैं, ज्ञान अग्नि के अंदर सारे कर्म जल के खत्म हो जाते हैं, कोई पाप और पुण्य रहता ही नहीं है जिसके कारण आपको दूसरा जन्म लेना पड़े। वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान ये है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मन अकर्ता है, ब्रह्मन इज नॉट डूअर। अगर आज मेरे को पता लग जाए कि मैं ब्रह्मन हूं तो क्या मैं अकर्ता आज से हुआ, पीछे भी मैं अकर्ता था। देखो समझ में आ रहा है कुछ, आज मेरे को अगर ये ज्ञान हो जाए कि मैं जेके नायर जीव नहीं हूं, मैं अकर्ता ब्रह्मन हूं, तो क्या ब्रह्मन अकर्ता आज से बना, ब्रह्मन तो बराबर अकर्ता था पीछे भी अकर्ता था, तो क्या मेरे पीछे कर्मों के लिए ब्रह्मन क्या जिम्मेदार होगा, ब्रह्मन तो कभी करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, उसमें तो डूअरशिप है ही नहीं। मेरे को आज पता लगा कि मैं ब्रह्मन हूं, इसके पहले हम अज्ञानी थे, मगर ब्रह्मन तो किसी दिन भी करता नहीं था, इसलिए मेरे जितने भी पिछले पाप पुण्य वाले कर्म हैं सब गए, इसलिए पाप पुण्य यही उभे दोनों सुकृत और दुष्कृत दो भी जो भी आपने किया है सब खत्म, जाति यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कर्मयोगी अभी तक जो हम लोगों ने देखा, कर्मयोगी निषिद्ध कर्म नहीं करता है और काम में कर्म नहीं करता है। दूसरा कर्मयोग के अंदर हम लोगों ने ये देखा थोड़ा सा भी अगर कर दें हम, अभिक्रमो नास्ति, उसका कुछ नाश नहीं होता, अभिक्रम शुरू किया खत्म नहीं किया तब भी उसका फल मिलता है। और दूसरे साकाम कर्म के अंदर पूरा काम नहीं करने से फल नहीं आता। कर्मयोग के अंदर कोई उल्टा फल कभी नहीं आता, कर्मयोग कभी उल्टा फल नहीं आता है, साकाम कर्म के अंदर उल्टा फल हो सकता है। आपने यज्ञ किया मगर मंत्रोच्चारण गलत कर दिया तो क्या होगा, फल उल्टा हो जाएगा। तो योग कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों की कुशलता है। कर्मों की कुशलता क्या है? ईश्वर बुद्धि के साथ कर्म करना ही कुशलता है। देखो, आप ईश्वर को जहां जोड़ दिए वो कर्म आपका कुशल हो गया। अगर हम कर्म योग करेंगे तो क्या होगा? तो बोलते हैं आपका मन शांत होगा। शंकराचार्य जी कहते हैं, योगे ही कर्मसु कौशलम स्वधर्म आखेसु कर्मसु वर्तमानस्य। ये योग क्या है? कहते हैं कि ये योग जो है अपना स्वधर्म करना, नंबर वन। फिर कहते हैं सिद्ध असिद्धयो समत्व बुद्धि, सिद्धि और असिद्धि के अंदर समत्व बुद्धि। पहला अपना कर्तव्य कर्म, दूसरा समत्व बुद्धि, और तीसरा ईश्वर अर्पित चेतसा तथा कौशलम कुशल भाव। बोलो इसको हम कुशलता कहते हैं। तो अगर आपको कर्म को कुशल बनाना है तो क्या क्या करना होगा? नंबर वन अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, दूसरा समत्व बुद्धि बनानी है कि हम सिद्धि और असिद्धि में दोनों में सम रहेंगे, और तीसरा हमारे कर्म ईश्वर अर्पित होने चाहिए, तब ये जाके आपका योग कर्मसु कौशलम, तब आपको ये लिबरेटिंग करेगा, तब आपको ये मुक्तिदायक बनेगा, मुक्ति के लिए आपको अधिकारी बनाएगा। देखो कर्म की कुशलता तो सब में होती है, चोर भी अपने कर्म में कुशल होता है, ये जान के रखना। अगर वो कुशल नहीं होगा तो पकड़ा जाएगा, उसको हम कुशल नहीं कहते हैं। जब चोर चोरी करने जाता है, कुशलता से चोरी कर लेता है, तो हम उसको कुशल चोर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहा है, समत्व बुद्धि नहीं है उसमें। अब एक चोर था, बहुत माहिर चोर था, बहुत कुशल चोर था, तो बस में जो है वो पॉकेट काट लिया। तो एक लेडी चोर भी उस बस में थी, उसने भी किसी का बैग वैग काट लिया। अब ये दोनों चोर मिल गए और दोनों ही कुशल, पकड़े नहीं जाते थे, दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में उन्होंने मन ही मन सोचा कि हमारा जो बच्चा होगा हमसे भी सुपर कुशल होगा। बच्चा हो गया, एक महीने का हो गया, मुट्ठी ना खोले बच्चा आके, वो बेचारे परेशान, मुट्ठी खोले बच्चा। तो 30 दिन के बाद में जो बच्चे ने मुट्ठी खोली, तो मुट्ठी में से उस नर्स की अंगूठी निकली जिसने उसको डिलीवरी कराई थी। कितना कुशल चोर! देखो गुरुजी कहते हैं भगवान जो है ना हमारी एबिलिटी देखता है, एबिलिटी नहीं देखता है, हमारी अवेलेबिलिटी देखता है, हम अवेलेबल हैं कि नहीं। वेदर आई एम एबल टू डू दैट कर्म और नॉट, वो नहीं देखना है। आप कर पाए कि नहीं कर पाए ये नहीं देखेंगे, आप भगवान के लिए कर्म करने के लिए अवेलेबल हो कि नहीं हो ये देखना है, इतना ही बस देखना है। कर्म फल क्या आएगा भगवान को नहीं देखना है। आप कर्म भगवान के लिए किए कि नहीं किए, उसके लिए आप अवेलेबल हो कि नहीं हो, भगवान उतना ही देखता है। तो ग्रेटेस्ट अचीवर कौन होगा? जो सेल्फलेस वर्क करते हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, वो ग्रेटेस्ट जो हैं अचीवर्स हैं। कोई एग्जांपल है? हाँ है ना, ऐसे लोग हैं क्या दुनिया में? हाँ है। देखो हर माँ अपने बच्चे के लिए कर्म करती है, वो सेल्फलेस वर्क है। अगर आप ये नहीं सोचते हो कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, अगर आप इस हिसाब से बच्चों का पालन करते हो कि मेरे को बुढ़ापे में कौन देखेगा, तब ये कर्मयोग नहीं हुआ। सेल्फलेसली अगर आप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हो बिना किसी कर्मफल की आशा से, तो वो ग्रेटेस्ट कर्मयोग है, ग्रेटेस्ट कर्मयोग। आप बताओ कितने साल तक आप कर्मयोग करते रह गए? जब तक बच्चा अपने पांव पर नहीं खड़ा होगा तब तक आप करते रहे। मगर अगर उसके अंदर ये आपकी आशा लगी रही, मेरे को बुढ़ापे में देखेगा, तो आपको कर्मफल आ गया ना। दूसरा, जितने भी स्वामी आचार्य लोग हैं जो वेदांत पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे कर्मयोगी हैं, क्योंकि वो आपसे एक पैसा नहीं मांगते, लेते भी नहीं हैं। उनको कर्मफल नहीं चाहिए, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। तो ये हुआ योग कर्मसु कौशलम। अब प्रश्न उठता है कैसे समता बनाएं। देखो बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बताते हैं, कैसे हम समता बनाएं। देखो 24 घंटे में समता बनने वाली नहीं है। क्या आप सोचोगे हम जा रहे हैं अब आज से हम सम रहेंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। परिस्थितियां आएंगी, आप डिस्टर्ब होगे, ये निश्चित है। मगर आपको ये देखना है कि हम कितनी जल्दी उसमें से बाहर निकल आते हैं, ये देखने वाली चीज है। अगर आप जल्दी बाहर निकल के आ जाते हो तो आस्ते 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 आप समत बुद्धि के अंदर हैं, और अगर उसमें फंस गए, दुख आया, पड़े हुए हैं, बाहर ही निकल पा रहे हैं, तो मुश्किल है। गुरुजी कहते हैं देखो प्रियजन की मृत्यु होगी। हमारे यहां 11 13 17 दिन का श्राद्ध का जो टाइम है, उस 13 दिन में 17 दिन में कि 11 दिन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स दिए हुए हैं। अगर आप उसके अंदर निकल के आओ, ये टाइम दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको निकल के वापस आना है। 11 12 13 17 दिन जो भी हैं उसके अंदर आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपका मन जो है बड़ा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जाना, आप घर में ही रहो। मगर उसके बाद आपको शोक में से निकल के आना है। अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो मुश्किल है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि पति के मरने के बाद में पत्नी जितने दिन तक जीवित रही उतने दिन तक दुखी रही। शी वेंट इनटू डिप्रेशन टिल डेथ फॉर मेनी मेनी इयर्स। तो समता तो बनानी पड़ेगी। देखो एक फैक्ट्री के अंदर, बेकरी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, सब कुछ जल गया। उसने बाहर बोर्ड लगा दिया, सब कुछ खत्म हो गया है, मगर हमारा उत्साह नहीं खत्म हुआ, हमारा साहस नहीं खत्म हुआ। कल से फिर हम ब्रेड बनाएंगे। फैक्ट्री के बाहर ले गया, सब जल गया, खत्म हो गया है। दूसरे आदमी क्या करते हैं, बैठ गए, क्या होगा? उसने बोर्ड पर लिख दिया फैक्ट्री जल गई है, मगर मेरा उत्साह और साहस खत्म नहीं हुआ, हम फिर से करेंगे। थॉमस एडिसन की, ही वाज इन्वेंटर ऑफ बल्ब ना, उसकी फैक्ट्री जल गई सारी की सारी। उसने अपनी लड़की को कहा कि मां को बुला के लाओ। क्यों? बोले इतना बड़ा फायर जिंदगी में देख नहीं पाएगी, उसको बुला के लाओ। तो कहते हैं कि थॉमस एडिसन उस रात में चैन से सोया। देखो कितनी समत्व बुद्धि है। हम सो पाएंगे? हमारा 10 रुपया अगर गिर जाए तो रात भर सोचते रहते 10 कहां गया मेरा, कौन ले गया? समत्व बुद्धि। गुरुदेव को जब हम लोग का मिशन चलाते थे, काफी सीनियर स्वामी छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं होता था, होता था, मर जैसे हुआ बोला अब चलो आगे बढ़ो, जो गया गया, हमको तो अभी रास्ता तय करना है, चलते जाओ आगे। संतुलन, ये सब समत्व बुद्धि का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, कैसे आपको संतुलन बना के रखना है, ये सब एग्जाम्पल है। देखो मृत व्यक्ति के जाने पर हमारे रोने से वो वापस नहीं आने वाला है, निश्चित है ना। कितने दिन तक रोओगे, क्यों टाइम अपना नुकसान कर रहे हो, जल्दी निकलो, निकल के भगवान का नाम लो, दूसरा काम करो, आगे भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए काम करते जाओ। रोते रहोगे तो काम होगा? कुछ नहीं होगा। आप घर में बैठे रो रहे हो और क्या कर रहे हो? तो समत्व योग की प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है? कि हम जो है दुख से या सुख से प्रभावित नहीं होंगे, एक नंबर। और दूसरा हमको क्या करना है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम निकल आए उसमें से। देखो ये दोनों आने वाले हैं, हमारे सबके जीवन में आने वाले हैं सुख दुख, मगर कैसे हम जल्दी से जल्दी निकल के आए, यही हमको प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग की साधना क्या बनी? साधना ये बनी कि सुख दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे, नंबर वन, और दूसरा और उनमें से हम जितनी जल्दी से जल्दी हो निकल के हम आएंगे, अपने कर्तव्य कर्म फिर शुरू कर देंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए फिर काम करेंगे। तो आप लोग के लिए ये साधना रही कि आप लोग देखेंगे कितनी बार संतुलन बिगड़ा और कितनी जल्दी हम वापस आ गए। तो दूसरा फैक्टर, एक तो समत्व बुद्धि के बारे में बताया, समत्व योग उच्चते पहले आगे बता दिया है। दूसरा फैक्टर भगवान बताते हैं कि योग कर्म सुकौशलम, समत्व योग भी कर्म योग है और कर्म की कुशलता भी कर्म योग है, दोनों ही कर्म योग है। कर्म की कुशलता क्या है? ईश्वर को जोड़ना, यह कर्म की कुशलता है। समत्व सुख दुख जो आएगा बैलेंस, दोनों ही कर्म योग है। आप ये सोच देखो कि आपने भगवान को कितनी बार याद किया, ये कर्म की कुशलता। कर्म करने के टाइम में आप भगवान को याद करो। अच्छा, ऑर्डिनरी कर्म क्या करता है? बोले ऑर्डिनरी कर्म आपको बांधता है और दूसरा कर्म बोले आपको छुड़ाता है। तद ही कौशलम यद बंधव स्वभावनी अपनी कर्मानी समत्व बुद्धिया स्वभाव निवर्तन्ते, जो आपको छुड़ाता है वो आपका है कर्मयोग और जो बांधता है वो साधारण कर्म है। देखो सब आदमी लोग अपना अपना प्रोटेक्शन लेते हैं। डॉक्टर जब जाते हैं ना कहीं पर एपिडेमिक हो गया है तो क्या करते हैं? अपना प्रोटेक्शन लेके जाते हैं, उनको नहीं रोग लगता है। इतने अस्पताल के अंदर रोगी को देखते हैं, डॉक्टर क्या रोगी बन के घर आता है, वो अपना प्रोटेक्शन लेता है। देखो आपके यहां इलेक्ट्रिशियन काम करने आता है ना तो भी अपना प्रोटेक्शन लेता है, उसको करंट लग सकता है, हम छुएंगे को करंट लगेगा, मगर वो प्रोटेक्शन लेता है, रबड़ वाले जूते पहनेगा, काठ के ऊपर खड़ा होगा, उसके बाद में वो लाइव वायर को टच करके जो अपना काम हम करता रहेगा। तो हमको भी ये प्रोटेक्शन लेना है। क्या प्रोटेक्शन है? कि समत्व योग करना है, सुख दुख के अंदर सम रहना है और योग कर्म सु कौशलम कि भगवान को उसके साथ में जोड़ना है। तो कर्म योग देखो बहुत सहज है, कर्म योग सहज है, केवल करना क्या है? भगवान को जोड़ना है और कुछ नहीं है, मगर इसके लाभ बहुत हैं। क्या लाभ है? मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो ज्ञान के अधिकारी बनोगे आप। कर्म योग करने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से आपके अंदर प्रश्न आएगा कि मेरा सारी जिंदगी में क्या करना है, क्या सारी जिंदगी मेरी इस वास्ते है कि खाली रोटी बेलनी है, क्या यही काम है, इसीलिए जन्म हुआ है, सारा जीवन खाना बनाना है कि सारा जीवन पैसे कमाने हैं, इसके लिए जन्म है। भगवान कहते हैं आप लोग कृपण हो, अगर इसलिए जन्म है कि पैसे कमाने हैं तो कृपण हो। तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आने से आप ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे। तो देखो कर्म हम जो करते हैं ना वो शारीरिक हो सकता है, वाचिक है, मानसिक है, तीन किस्म से कर्म हो सकते हैं। तो शारीरिक कर्म कैसे होनी चाहिए, कुशल कर्म, जो भी आप काम करो आप परफेक्ट होना चाहिए, आप लिख रहे हो तो हम लोग हिंदी में कहते हैं ना आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, मोती की तरह, बोलते हैं ना कैसे लिखाई होनी चाहिए, मोती की तरह होनी चाहिए। आपकी वाणी कैसी हो, बोले बहुत मधुर हो। जो दूसरों को तकलीफ ना दे, दूसरों के लिए हितकारी हो, ये सब जो है वाणी के हैं। देखो अच्छे कर्म से मनुष्य जो है नरक से निकल के स्वर्ग में आ सकता है, अच्छे कर्म से, खराब कर्म से स्वर्ग में रहते हुए भी। अगर आप अभी भी अगर नरक के अंदर हो, दुख के अंदर हो, कर्मयोग अगर करोगे तो ये नरक से स्वर्ग की तरफ जाओगे, और अभी अभी स्वर्ग में हो कर्मयोग नहीं करोगे कहां जाओगे, नरक क्या है, जन्म मृत्यु चक्र चलता रहेगा, अगला चोला कौन सा मिलेगा क्या पता है, भगवान के पास में कितने चोले हैं, 84 लाख, चोले का मतलब शरीर, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, टेनिस के लिए कपड़ा है, ऑफिस जाने का अलग है, सोने का अलग है, वैसे भगवान के पास में 84 लाख ड्रेस है। जीवात्मा जाता है कौन सा ड्रेस चाहिए पसंद कर लो, भगवान हमारी ये वासना है, चलो वो ले लो, उसमें थक जाओगे फिर वापस आओगे, फिर भगवान बोलोगे आप कौन सा ले, बोला तुम्हारी पसंद है 84 लाख का लेते जाओ, एक एक करके घूमते रहो तुम, पोशाकें लगी हुई है जो मर्जी ले लो। अगर देखो भूमि अगर ठीक होगी ना तो अच्छा सीड जो है पनपेगा, अगर जमीन ना ठीक बनी हो जितना बढ़िया सीड डाल दो वो नहीं पनपेगा। तो हम लोग को गीता में भी कहा हुआ है कि ऊसर भूमि के अंदर गीता ज्ञान मत दो, ऊसर भूमि मतलब जो भूमि अभी तैयार नहीं हुई है उसको ज्ञान नहीं दो। ज्ञान अगर दोगे तो क्या होगा, बोलेगा फल नहीं होगा उसका, फल मिलने के लिए हमको भूमि ठीक करनी है, भूमि ठीक करना मतलब मन को ठीक करना है, मन को ठीक करना मतलब मन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना मतलब कर्मयोग करना है, करते 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 मन शुद्ध हो जाएगा और हम जो है अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अंतिम लक्ष्य क्या है, योग कर्म सु कौशलम, कर्मजम, हाँ
कर्मजम बुद्धियुक्ता ही,
कर्मजम बुद्धियुक्ता ही,
फलम त्यक्त्वा मनीषिणः,
फलम त्यक्त्वा मनीषिणः,
जन्म बंध विनिर्मुक्ताः,
जन्म बंध विनिर्मुक्ताः,
पदं गच्छन्त्यनामयम्,
पदं गच्छन्त्यनामयम्,
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, पदं गच्छन्त्यनामयम्।
देखो यहां पर जो है ना कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ये कर्मजम के साथ में फलम त्यक्त्वा ये जोड़ना पड़ेगा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, आपको कर्म करना है, फलम त्यक्त्वा मतलब फल की चिंता उस टाइम में नहीं करनी है, फल तो आएगा ही, जो भी कर्म करोगे फल तो आना ही आना है, मगर कर्म के समय फल की चिंता नहीं करनी है। बुद्धियुक्ता, बुद्धियुक्ता का मतलब जो है जिसने कर्मयोग के बुद्धि का निश्चय कर लिया है वो है बुद्धियुक्ता, और जिसने सांख्य योग से ज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसे लोग वो क्या हुए, मनीषी ना, ऐसे लोग मनीषी हो गए, मुनि बन गए। मुनि कौन हुआ, जिसने कर्मयोग किया, कर्मयोग के बाद में मन शुद्ध हुआ, मन शुद्ध होने के बाद में ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो मुनि हो गया। देखो हमारे जीवन के दो ही स्टेप हैं, दो ही काम करना है, तीसरा काम नहीं है। पहला काम मन को शुद्ध करना है, दूसरा काम ज्ञान को प्राप्त करना है, बस यही दो काम है। और हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, मन शुद्ध करने का ही काम नहीं शुरू किया अभी। दो ही स्टेप हैं, मन शुद्ध करो, ज्ञान लो, मुक्त कथा। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता नीचे न। तो योग बुद्धि कर्म फल को योग बुद्धि से छोड़कर यानी फल पर आसक्ति या स्प्रिया नहीं होनी चाहिए। हमको ये फल चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कर्म करते जाओ और तत्पश्चात जब मन शुद्ध हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति से आप मुनि बन गए। ऐसे मुनि का फल मन जो कैसा होता है उसके कंट्रोल में रहता है, जहां मर्जी अपने मन को ले आए वो। हमारा मन अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता है। और मुनि का मन उसके कंट्रोल में रहता है। ऐसा करने से क्या मिलेगा? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। मन शुद्ध किया, ज्ञान प्राप्त हुआ, हम मुनि बने। मुनि को क्या मिला? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जन्म बंध क्या है? आपका कर्म है, कर्म आपको बांधता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो इष्टानिष्ट देह प्राप्ति है वही कर्मजम फल कहलाता है। आप अगर साकाम कर्म करते रहोगे इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट मतलब पाप पुण्य सुख दुख, ये जो आपकी बुद्धि में जो चलता रहता है वो क्या होता है? बोले वो आपको फिर से जन्म देगा। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष उस कर्म फल को छोड़कर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में ही जन्म बंधन से निर्मुक्त होकर अर्थात जन्म नाम के बंधन से छूटकर विष्णु के मोक्ष नामक अनामय सर्व उपद्रव रहित परम पद को पा लेता है। मगर जो समत्व बुद्धि से काम करता है, समत्व बुद्धि कर्मयोग, जो कर्मयोग से काम करता है वो क्या हो जाता है? वो जन्म का चक्कर उसका खत्म। कर्म का बंधन रहेगा तो जन्म होगा। साकाम कर्म आपको बांधता है, कर्मयोग बंधन छुड़ाता है। कौन सा कर्म करोगे? कर्मयोग करना होगा। विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। पदम गच्छन्ति अनामयम्, वो कौन से पद को जाता है? गच्छन्ति अनामयम्, आमय मतलब रोग। ऐसे पद को पहुंच जाता है यहां पर रोग नहीं है, यहां पर दुख नहीं है, जहां पर आनंद ही आनंद है, ऐसे जगह को पहुंच जाता है। देखो कैसे? तो कहते हैं कि जन्म का हेतु क्या है? कर्म। आपको जन्म क्यों मिला? आपने पीछे कर्म किए हुए हैं। कर्म कहां से आया? डिजायर से आया। डिजायर कहां से आई? अविद्या से, अज्ञान से। किस चीज का ज्ञान? अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, वही अज्ञान है। इससे आया। और सांख, सांख्य क्या करता है? देखो कर्म योग जो है ना डिजायर को कंट्रोल करता है, इसको समझ दो अच्छी तरह से। कर्म योग जो है डिजायर को कंट्रोल करता है और सांख्य डिजायर का जो मूल है अविद्या उसका नाश करता है। देखो समझ आया? कर्म का हेतु क्या है? कामना, डिजायर। डिजायर का हेतु क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानना। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप यह है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। मगर उसका ज्ञान नहीं है हमको। हम अपने आप को क्या समझते हैं? अपूर्ण। मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं, इसलिए सारी जिंदगी अपने को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। इतने पैसे हो जाएंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति से हमारी विवाह हो जाएगा, हम पूर्ण हो जाएंगे, ऐसे बच्चे होंगे हम पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नौकरी मिल जाएगी पूर्ण हो जाएंगे, मगर कभी भी हम पूर्ण नहीं हुए। तो कामना क्यों बनी? अविद्या के कारण। तो कर्म योग जो है ना, इसको जो है कमती करता है, मगर अविद्या को हटाने के लिए विद्या चाहिए, विद्या को हटाने के लिए विद्या चाहिए। विद्या क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? सांख्य योग। वो क्या है सांख्य योग? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं। हम 10 बार बोलते हैं तब भी काम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध होगा तो एक बार में काम होगा, मन शुद्ध नहीं है। तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? अंतिम लक्ष्य है पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम जहां पर कोई रोग नहीं है, वहां कोई मानसिक रोग नहीं है, शारीरिक रोग नहीं। यहां दुनिया के अंदर हम फंसे हुए हैं शारीरिक रोग मानसिक रोग के अंदर में। और वो पद क्या है? वहां पर कोई भी रोग नहीं है। क्यों नहीं रोग है? क्यों नहीं रोग है? क्योंकि ब्रह्मन का शरीर नहीं है, उसका ग्रॉस बॉडी नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। हम लोगों ने ईशावासी उपनिषद में पढ़ा था ये कि ब्रह्मन का स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए स्थूल शरीर में रोग होता है। उसका सूक्ष्म शरीर नहीं है, मानसिक रोग कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में, वो भी नहीं है। तो ऐसे ही जगह पर जब पहुंच जाओगे अनामयम, वहां पर कोई रोग नहीं है, ठीक है। बंधन क्या है हमारा? शरीर से बंधन है, परिस्थिति से बंधन है, व्यक्ति से, स्थान से, सब जगह बंधे हुए ना, यही हमारा बंधन है। और ज्ञान से बोले ये सारे के सारे बंधन आपके छूट जाएंगे। तो अगर हमको अच्छे कर्म करने हैं क्या होगा? फिर अच्छे कर्म करके पुण्य हो जाएगा, पुण्य से फिर उस तरफ चले जाएंगे। मगर अगर हम कर्मयोग करते रहे तो एक कर्मयोग से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, पुण्य नहीं लेते हैं, उस पुण्य को मन की शुद्धि में परिवर्तन करते हैं, यह कर्मयोग। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलेगा। हम पुण्य नहीं चाहते, हमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमको क्या चाहिए? मन की शुद्धि कर दो हमारी, हम इतना ही चाहते हैं। अगर हमको डिजायर को ठीक करना है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको डिजायर की क्वांटिटी कम करनी चाहिए। किंडल लाइफ में आप लोगों ने पढ़ा, क्वालिटी चेंज करनी है। तीसरा डायरेक्शन चेंज करना होगा। हमको मकान नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, क्वांटिटी कम करो, दुनिया की चीजें क्वांटिटी कमती करनी है। हम लिस्ट लेके जाते हैं कि 2 चीज हमको मरियानों से लेनी है, जाके फिर 10 लेके आते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी चेंज करो। तीसरा डायरेक्शन चेंज करो। अब ये कामना होनी चाहिए कि हमको जो है बाजार की चीजें नहीं चाहिए भगवान, अब हमको आप चाहिए, आपको हमको चाहिए, आप आओ। ये डायरेक्शन चेंज हो गया, वेरी गुड। अब एक प्रश्न उठता है कि मैं बहुत साल से अध्यात्म की साधना करना हूं, ये योग बुद्धि खत्म कब होगी? कितने दिन तक करना होगा? कोई लिमिट है क्या? प्रश्न आता है ना ऐसा, कर्मयोग तो आप बोल रहे हो करना है करना है करना है, कितने दिन तक करना होगा? भगवान इसका उत्तर अगले श्लोक में देने वाले हैं। मगर देखो, अगर आपको यहां से कहीं जाना है, मान लो डाउनटाउन ही जाना है, और आपने ट्रेन ले ली, आप ट्रेन में चढ़ गए, बीच में स्टेशन तो बहुत आते हैं, अगर आप स्टेशन से उतर गए तो डाउनटाउन पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। तो जब तक आपको कर्मयोग तब तक करना है जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। जिस दिन लक्ष्य मिल जाएगा, कोई टाइम लिमिट नहीं बताएंगे भगवान, 5 साल करना है ऐसा नहीं कहेंगे, बोले आपका वो जैसे ही आएगा आपको पता लग जाएगा, आपको उतर जाना है, बस हो गया, कर्मयोग छोड़ दिया। क्या करना है इसको हम अगले दिन देखेंगे।
कोई लिबर्टी से चढ़ता है, कोई लेक
फोर्स
से चढ़ता है, डाउनटाउन तो
अब आप लिबर्टी से चढ़ के बोलो लेक फोर्स में उतर जाएंगे तो डाउनटाउन कैसे पहुंचोगे? नहीं होगा ना,
क्विक क्विक नहीं होगा,
नहीं होगा। आपको जो है चलते रहना होगा। लोग ये प्रश्न करते रहते हैं, लोग इतने दिन से साधना कर रहे हैं, आपने कहां तक कर्मयोग करने के लिए कर रहे हैं, 20 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, क्या करें अब, छोड़ दे। अरे भाई आपने कितनी मैल लगा के रखी हुई है आपको क्या मालूम है। मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि एक दिन हमने खाना खाया, एक पता नहीं क्या कड़ी का एक ड्रॉप गिर गया मेरे सादे में ना, और मैं उसको 2-3 बार रगड़ता रहा, जा ही नहीं। देखो 2 बार साबुन लगाया उसको, तब हमारे हमने कितनी कीचड़ डाल के रखा हुआ है बताएंगे भगवान, कितना कीचड़ है बताएंगे, अगले श्लोक में आने वाला है। तो जब वो सब खत्म हो जाएगा तब आपको करना है। ओ
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।